ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य होता है स्वयं भगवान से वरदान प्राप्त करना। तो हमारे आदरणीय राजू भाई जी, जिन्हें स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, ऐसी महान आत्मा हम सभी के बीच है, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो भाई जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। भाई जी का परिचय अगर मैं देना चाहूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना बड़ा परिचय है। फिर भी हमारे नए भाई बहने हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी। भाई जी छोटेपन में ही 1972 में अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के ज्ञान में आए और 1972 में आप मधुबन में आए, और उससे पहले ही आपको बाबा का परिचय मिल गया था। छोटेपन में उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से आप आते हैं, और 1976 से आपने सिंधी भाषा सीखकर, जो कि दीदी जी का आग्रह था कि आप सिंधी सीखे, ताकि जो हमारी दादियों ने दीदियों ने बाबा के महावाक्य नोट किए हुए थे वह हम सब तक पहुंचे, तो आपने सिंधी भाषा सीखकर उसे हिंदी में टाइप किया और आज हम सबके पास वह मुरली के रूप में पहुंचता है। और मुरली में जो सार वरदान स्लोगन आदि आते हैं वह सब भाई जी की ही रचना होती है। वैसे तो आप रूरल विंग, जो हमारी ग्राम विकास प्रभाग है, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, उसके उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, और उस विंग के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि शाश्वत योगिक खेती, किसी गांव को दत्तक लेना, और भी जो भी उस विंग के अंतर्गत प्रोग्राम होते हैं उसमें आपका बड़ा रोल होता है। और उसके साथ साथ आप दादी दीदी के बहुत नजदीक रहे, क्योंकि उनकी तरफ से जो पत्र व्यवहार होता था वो आप ही के द्वारा होता था। और साथ ही साथ आप पीस ऑफ माइंड चैनल पे जो अमूल्य रतन का जो टॉक शो देखते हैं उसमें तो आप भाई जी को देखते ही हैं। और आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। और देश विदेश में जाकर आपके पास जो ज्ञान का खजाना है उस खजाने को बांटा है और अनेक आत्माओं को लाभान्वित भी किया है। और आज भाई जी हमारे समक्ष है, दिव्यता व संपन्नता, पूज्य स्थिति का श्रृंगार, इस विषय को लेकर के। तो ऐसे दिव्य गुणों से भरपूर भाई जी हम सबको इस विषय पे प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा के इस कॉन्फ्रेंस साल में आप सब बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, योग भट्टी का चांस आनंद सरोवर में आपको मिला, लेकिन कुछ कारणों से आपको फिर यहाँ पर बिठाया गया। ये स्थान भी अपने आप में बहुत विशेष है और हर एक बाबा का बच्चा जब लक्ष्य लेकर के आता है कि मुझे कुछ अनुभव करने हैं, तो लक्ष्य के अनुसार अगर वो अटेंशन देते हैं कि मुझे स्वयं को देखना है, बाबा को देखना है, अंदर ही अंदर बाबा से बातें करनी है, तो ये एक बहुत सुंदर योग की स्थिति अपने आप बन जाती है। योग ही है जो इस समय आत्मा में दिव्यता लाता है, क्योंकि जिस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, पूज्य स्थिति, आधा कल्प तो हम सब पुजारी रहे, देवी देवताओं की कितनी पूजा आराधना की, संगम युग पर बाबा हम सबको पुजारी से पूज्य बनाते हैं और पूज्य स्थिति का श्रृंगार सर्व दिव्य गुण है, दिव्यता है। दिव्यता को अगर सार रूप में कहें, हर प्रकार की पवित्रता, जितना दृष्टि वृत्ति स्मृति बोल और कर्म, पांच बातों पर मैं ध्यान खिंचवा रहा हूं। इन पांचों पर अगर हमारा ध्यान रहता है, अटेंशन रहता है, तो हमारा जीवन एक दिव्यता से संपन्न बनता है। सबसे पहले बाबा ने हम सब की दृष्टि का परिवर्तन किया। आज विश्व के अंदर हर एक आत्मा, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा शास्त्रवादी है, विद्वान है, लेकिन एक आत्मिक दृष्टि से व्यवहार करना, आत्मा देखकर के बात करना, शरीर दिखाई भी न दे, इस शरीर के अंदर चमकती हुई मणि को देखें, उसका अभ्यास करें, मैं समझता हूं यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां पर हम सबको ये पढ़ाई मिलती है कि आप एक आत्मा हैं, आप इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हैं, आप इस भ्रकुटी आसन पर निवास करती हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के कार्य व्यवहार संबंध संपर्क में आते हुए हरेक के भ्रकुटी के बीच आत्मा देखो और आत्मा देख करके व्यवहार में आओ। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, जितने भी विकारों की उत्पत्ति होती है देह अभिमान के कारण, उन सब को जीतने की एक विधि है। बाबा बड़े दो शब्द देते हैं, कहते हैं बच्चे आत्मा मणि है और शरीर सांप है। जैसे सांप कोई मणि वाले होते हैं, ऐसे ही शरीर में आत्मा रूपी मणि जो एक चमकती हुई इस शरीर का नियंत्रण कर रही है, उसको देखने का अभ्यास करना। दो दिन पहले बाबा की मुरली में एक वरदान था जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे जब ये अभ्यास आपका पक्का हो जाएगा, आत्मा देखने का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का कर लोगे, तो कई भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना मिल जाएगा। बहुत गहरी बात है ये, आत्माएं भटक रही हैं, चाहे शरीर लेकर के भटक रही हैं, चाहे शरीर छोड़ के भटक रही हैं। शरीर में है तो भी देह मन के कारण, किसी के नाम के पीछे, रूप के पीछे, धन के पीछे भटक रही हैं। कितनी चाहनाएं हैं व्यक्ति की जो उसको भटका रही हैं। और दूसरी आत्माएं जिनको कोई कारण से शरीर नहीं मिला, वो तो भटक ही रही हैं और खुद भी भटकती हैं, दूसरे में भी प्रवेश करके उसको भी भटका देती हैं, परेशान करती हैं। उन दोनों से बचने और दोनों को मुक्त करने की विधि, ध्यान देना, जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अच्छा अभ्यास करते हैं, आत्मा भटकने से छूट जाती है। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मेरे जो दिव्य गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं, वो हमारे जीवन में अपने आप आते हैं, हमारा श्रृंगार शुरू हो जाता है। अगर कोई को पूज्य स्थिति का श्रृंगार करना है तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। आत्मा के जो निजी सात गुण हैं, जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके बाबा से कनेक्ट होते हैं, उतना वो गुण जो इस समय नहीं रहे उनमें संपन्नता आती जाती, भरपूरता आती जाती है, आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है, आत्मा पवित्र स्वरूप बन जाती है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आत्मा के सात गुण हम कहते हैं, सुनते हैं। और किसी न किसी एक गुण की कमी के कारण हमारा सारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। श्रृंगार क्या बिगड़ा, ये स्थूल श्रृंगार की तो बात ही नहीं है। अगर कोई के अंदर प्रेम के गुण की कमी है तो कितना गुस्सा, कैसे वो बात करता है, कैसे वो रहता है, कितने टकराव हो जाते हैं, उसका सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है, कोई उसको ऊंची नजर से नहीं देखता। अगर वो पवित्र स्वरूप स्थिति में नहीं रहता है, कहीं भी दैहिक आकर्षण है, देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह का ही चिंतन करना, पवित्रता की स्टेज में कमी आती है तो हमारा श्रृंगार बिगड़ जाता है, वो पूज्य स्थिति हमारी नहीं बन सकती है। इसलिए संगम युग पर हम सब बाबा के बच्चों को पूज्य स्वरूप की स्थिति बनानी है। सतयुग त्रेता के अंदर नेचुरल पूज्य आत्माएं हैं, न किसी की पूजा करती हैं, न किसी से पूजा कराती हैं, सभी पूज्य हैं, क्योंकि पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है, वो दिव्यता से संपन्न है, इसलिए वहां पर पूजा की बात ही नहीं रहती। लेकिन जब द्वापर युग शुरू होता, विकारों की प्रवेशता होती, आत्माएं देहमान में आ जाती, तो जिन्होंने संगम पर अपनी पूज्य स्थिति बना ली है, भक्त आत्माओं को उनके साक्षात्कार होते हैं, और वो साक्षात्कार करके अपना इष्ट समझ करके उनकी पूजा करती हैं। इसलिए पूज्य स्थिति संगम युग की देन है। इस समय हम आत्माओं को पूज्य स्थिति को प्राप्त करना है, और उसकी विधि यही है, हम अपने आत्मा के निजी सातों गुणों को महसूस करें, रियलाइज करें, जिस गुण की कमी है। अभी कोई ऐसा नहीं कह सकता है मैं सातों गुणों में परफेक्ट हो गया हूं, कुछ न कुछ डिफेक्ट हैं। और परफेक्ट होने के लिए हम भट्टियां कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बाबा से कनेक्ट होते हैं, सागर जो स्वयं संपन्न है वही अपने बच्चों को संपन्न बनने की विधि बताता है कि बच्चे अपने को मेरे से बुद्धि योग को लगाओ और जो मेरी शक्तियां हैं वो अपने अंदर खींच लो। तो बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, सब सागर की तुलना है उनकी। अब उस सागर के साथ जब हमारा बुद्धि का कनेक्शन जुटता है तो जो कमी है, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी योग एक प्रकार से नहीं करो, एक जैसा नहीं करो, कईयों को एक पहला पाठ जैसे पढ़ा दिया जाता है ना, आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम से आई है, शांत उसका स्वधर्म है, बस शांति के सिवाय दूसरा कोई अभ्यास नहीं करते। कभी ज्ञान स्वरूप होकर के बाबा से बातें करो, कितना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया, आपने त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, कहां उस चक्र के बारे में श्री कृष्ण को या विष्णु को चक्र देकर के हिंसा दिखाई है। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं जो माया के गले को काट देते हैं, बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, ये स्थूल हथियार नहीं है, हिंसक हथियार नहीं है, ये स्व का दर्शन है। क्या दर्शन करते हैं, मैं आत्मा कितनी अनादि और आदि स्वरूप में परम पवित्र थी। पहला दर्शन ये करो, करते हो ना, अभ्यास करते हैं। जब मैं आत्मा अपने परम नाम घर में थी तो मैं कितनी चमकती हुई, एक शुद्ध पवित्र, कोई बंधन नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, संपूर्ण पावन स्टेज में बाबा के साथ रहती थी। वो चमक कैसी होगी, वो लाइट कैसी होगी, वो दिव्यता कैसी होगी, परम धाम घर की स्टेज को बार बार अनुभव करो। फिर जब मैं आदि काल में आई, जन्म के चक्र में आई, तब योग बल से जन्म लिया। पांच तत्व प्रकृति के पवित्र थे, वायुमंडल में पवित्रता छाई थी, आत्मा पवित्र थी, इसलिए हमारा आदि स्वरूप इतना पवित्र, इतना शुद्ध, जो आज श्री कृष्ण की कितनी पूजा करते हैं, कितना उनको याद करते हैं। फर्स्ट जन्म, फर्स्ट प्रेस, वैकुंठ नाथ, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व गुणों से संपन्न, वो डिग्री लेकर के वो आत्मा गई। डिग्री मिली कहाँ, सतयुग में तो नहीं पढ़ाई किया ना, जो डिग्री ले लिया। संगम पर ये डिग्री हम बच्चों को बाबा से मिलती है। जितना सर्व गुणों पर हमारा ध्यान रहता है, पहले ईश्वरीय गुण आते हैं, और जितना ईश्वरीय गुण आते जाते हैं उतना दिव्य गुण भी बढ़ते जाते हैं, दिव्यता आती जाती है। तो सभी सातों गुणों को रोज नए नए ढंग से अभ्यास करो। कभी ज्ञान स्वरूप बैठ करके ज्ञान सागर की लहरों में लहराओ, कितना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान दिया है बाबा ने, चिंतन करो, स्व का दर्शन करो, चारों युगों में चक्र लगाओ। नेगेटिव रूप में गिरावट नहीं, पॉजिटिव रूप में गिरे हैं, देहमान में अगर आए हैं तो भी एक की अव्यभिचारी भक्ति की है। द्वापर युग में हमने ही भक्ति शुरू की और हम ही पूज्य जो थे पुजारी बने, लेकिन पुजारी बनते हुए भी एक शिव बाबा के अव्यभिचारी भक्त रहे। कितना श्रेष्ठ भाग्य भक्ति के अंदर भी हमारा रहा, हम वो भगत ऐसे नहीं थे ठगत वाले। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों का चक्कर लगा करके उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं को, भाग्यवान आत्माओं को भगवान की प्राप्ति हुई, ज्ञान मिला, भक्ति का फल मिला। आप सब समझते हो कि हम सबको भक्ति का ये फल मिला है, ये भक्ति की ही नहीं है, भक्ति की ही नहीं है ऐसे? किसने किसने भक्ति नहीं की है? इस जन्म की बात तो नहीं कहेंगे कि भक्ति की या नहीं की, लेकिन अगर भक्ति नहीं की होती आदि काल से, द्वापर युग से, तो भगवान नहीं मिलता। भगवान उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने बहुत निश्चय से अव्यभिचारी भक्ति की। द्वापर से भक्ति करते करते जब नीचे उतरते आए, अंत समय में भगवान ने हाथ पकड़ा, बच्चे तुम्हें भक्ति का फल मैं ज्ञान देता हूं, और ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। तो ये ज्ञान स्वरूप स्थिति जो है आत्मा की, वो धोखे से, दुखों से, भटकने से अपने आप को छुड़ा देती है। कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा माना समझदार है, जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है, वो सोच समझ के करता है। ऐसे नहीं जो कर लिया हो गया, करने के बाद अगर सोचा जाता है तो उसको अज्ञानी कहा जाता है, वो पश्चाताप है। जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं वो कभी भी करने के बाद, बोलने के बाद, हो जाने के बाद पश्चाताप नहीं कर सकती। कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, अपने पर कंट्रोल है, मन के ऊपर कंट्रोल है, इंद्रियों पर कंट्रोल है, इसलिए उस आत्मा से कभी भी कोई गलत काम इन कर्म इंद्रियों से नहीं हो सकता। तो हम सब ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहें। आज बाबा ने कहा ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। बड़ी बात थी ना, ज्ञान अमृत है और जो बाबा का मिला हुआ, बाबा से मिला हुआ ज्ञान है वो अमृत तुल्य है, हमें अमर पद दिला देता है, अमर बना देता है। और इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान हम बच्चों को प्राप्त है। कितने भी बड़े विद्वान हैं, सब वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, गीता पढ़ लें, लेकिन ये सत्य ज्ञान स्वरूप में आ जाए, पढ़ना अलग चीज है, दूसरों को सुना देना बता देना, लेकिन स्वरूप में आ जाए, सिर्फ चिंतन में न रहे। तो जो कुछ हम सबने बाबा से सुना है, पढ़ा है, नया ज्ञान बाबा ने दिया है, वो ज्ञान तो हमें कहां भटका के ले गया। आत्मा का ज्ञान मिला तो ये भी मिला कि आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो, आत्मा ही परमात्मा है। न परमात्मा का ज्ञान है, न घर का ज्ञान है, न कर्मों का ज्ञान है, लेकिन ज्ञानी कहलाते हैं हम। बाबा के बच्चों को सत्य ज्ञान मिला, आत्मा क्या है, आत्मा कैसे सृष्टि मंच पर आई है, और आत्मा जो कर्म इन कर्म इंद्रियों से करती है उसी कर्म के अनुसार उसका उत्थान और पतन होता है। पूरे उत्थान और पतन का सत्य ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया, एक रोशनी दे दी, एक दिव्यता दे दी। जितनी रोशनी आती है उतनी दिव्यता आत्मा के अंदर आ जाती है। कहते बहुत ज्ञानी तू आत्मा है, इसका देखना, इसका बोलना, इसका चलना, इसका बैठना, इसका व्यवहार कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। पूज्य हो गया ना, पूजी माना, पूजा थोड़ी कोई कर रहा है, कोई बैठ के पूजा कराना नहीं है किसी को, ब्राह्मणों को पूजा करानी नहीं है, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना लेनी है जो लोग उस पूज्य नजर से देखें, कहें ये तो बहुत महान है। कलयुग में भी ऐसे हो सकते हैं क्या? कितनी इनकी पवित्र दृष्टि है, कहीं इनकी आंख नहीं जाती, आंख बड़ी जल्दी जल्दी जाती है ना, किसी के रूप की तरफ, किसी के रुपये की तरफ भटक जाती है, चंचल हो जाती है, क्रिमिनल हो जाती है। इसलिए बाबा कई मुरलियां ऐसे साकार में चलाई, बच्चे आंखें बहुत धोखा देती हैं। भक्ति मार्ग में तो सूरदास ने आंखें ही निकाल दी, और बाबा कहता मेरे बच्चे ये आंखें तो जहान आंखें हैं, तो जहान है, इसको निकालना नहीं है, इसको परिवर्तन कर देना है। जो दैहिक दृष्टि वृत्ति है उसको रूहानियत की वृत्ति में बदल दो। ये सब आत्माएं हैं, ये सब इस नाटक के पाठधारी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। हम एक घर के रहवासी इस नाटक में खेल खेलने के लिए आए हैं। किसी को स्त्री का चोला, किसी को पुरुष का चोला, संबंध बने तो कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई सासू, कोई ससुर, कितने संबंध बन गए, लेकिन है कौन? एक्टर तो एक आत्मा है। और ड्रेस बदलती गई, ड्रेस लेती गई, उसी आधार से उसने समझा ये मैं हूं। इस मैं को समाप्त कराया बाबा ने हमें। बच्चे सब खेल खेलने वाले एक्टर हैं, ये सब पाठधारी हैं, आप तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। तो अगर अपना पूज्य स्वरूप, पूज्य स्थिति का श्रृंगार करना है तो आत्मिक स्थिति से अपनी दिव्यता को, पवित्रता को बढ़ाओ। देखने में पवित्र ये आत्माएं हैं तो पवित्रता आ जाएगी, दैहिक दृष्टि खत्म हो जाएगी। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और अपना अपना भाग्य खा रहे हैं। इसका भाग इतना ऊंचा क्यों है, इसका ऐसा कैसे है, पता नहीं इसने क्या ऐसे गलत काम किए जो इतना इसने पैसा कमा लिया। कई लोग इस नजर से बातें करते और देखते हैं। बाबा ने हम सबको कर्मों का बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। अगर कोई इस समय कोई गलत काम कर रहा है तो उस गलत कर्म का परिणाम उसे मिलेगा ही, और गलत करते भी अगर कोई सुख भोग रहा है, कोई बहुत आराम की जिंदगी जी रहा है, कर गलत रहा है, लेकिन फिर भी उसको बहुत सब प्रकार की फैसिलिटीज हैं, तो जरूर उसने पास्ट में कुछ इतने पुण्य किए हैं, अच्छा किया है, तब उसका फल उसको प्राप्त हो रहा है। तो बाबा ने कितना एक गहरा ज्ञान समझ दी है। तो हम सब जितनी इस समझ का प्रयोग करते हैं उतनी दिव्यता अपने आप जीवन में आती जाती है, पवित्रता आती जाती है। किसी के भी नाम रूप में, किसी के भी धन दौलत में, किसी की भी विशेषता में आत्मा प्रभावित न हो। प्रभावित होना भी अपवित्रता है, अदिव्यता है, दिव्यता नहीं है। बहुत जल्दी का प्रभाव पड़ जाता है। कोई ने कुछ सहयोग दे दिया, कोई ने कुछ चमत्कार दिखा दिया, कोई ने कुछ मदद की, आत्मा पर से बहुत अच्छा पहुंचा हुआ है, बहुत सिद्धि वाला है, और उसी रूप में उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं, फिर उससे अपेक्षाएं रखते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और धीरे धीरे रिजल्ट क्या होती, उसी में फंस जाते हैं, धोखा खा लेते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को, कोई भी देहधारी आत्मा कितनी भी गुणवान हो, कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी धनवान हो, आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा पर हम पैदा हुए हैं, एक बाबा हमारा है, दूसरा कोई नहीं। जो बाबा पर संपूर्ण रीति से प्रभावित है वो किसी भी देहधारी आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, दिव्यता क्या है उसकी बहुत गहराई है। अगर प्रभावित हो रहे हैं माना दिव्यता नहीं है, दिव्यता कहीं न कहीं प्रवेश कर रही है। दूसरा एक शब्द बाबा कहते हैं, बच्चे अगर कोई के कमियों पर अवगुणों पर ध्यान जा रहा है और उनसे सूक्ष्म रीति से भी नफरत पैदा हो रही है, घृणा आ रही है, अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी अदिव्यता है। वो आत्मा का अपना रोल है, उसका अपना पार्ट है, मुझे उसकी कमी कमजोरी और गुणों को देख करके उन्हें नोट नहीं करना है, नहीं तो वो अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और अगर हम 10 लोगों का वर्णन करने लगेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो सबके अंदर वो कीटाणु फैलने लगेंगे, वो जर्म से फैल जाएंगे कमियों के, कमजोरियों के। इसलिए सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत ध्यान देना है, किसी भी देहधारी आत्मा की तरफ प्रभावित नहीं होना और किसी भी आत्मा से वैर विरोध नहीं रखना, टकराव में नहीं आना, नफरत की दृष्टि नहीं रखना। ये दोनों बातें आत्मा को पूज्य स्वरूप से नीचे गिराने वाली हैं, कहीं न कहीं दिव्यता को खत्म करने वाली हैं। जिन्हें अटेंशन है कि मुझे अपने आप को पूज्य स्वरूप, पूज्य स्थिति में ये ले जाना है, उसका मुझे श्रृंगार करना है, तो ऐसी आत्माएं, पूज्य स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्माएं दिव्यता को बहुत महीनता से समझती हैं, बहुत गहराई से समझना। दिव्यता बाबा किसको कहता है? एक दिन मैं एक जगह पर एक कहानी सुनाता हूं आपको, क्लास तो बहुत सुनते हो। मधुबन में एक बार दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जितने आबू की गुफाओं में सन्यासी हैं उन सबको निमंत्रण दो, बुला के ले आओ, ब्रह्मा भोजन खिलाने हैं। मधुबन में बाबा के घर में निमंत्रण दे के आओ। तो हम 4-5 भाई अलग अलग गुफाओं की तरफ ग्रुप बना बना के गए। तो हम 4 लोग, लेकिन दादी जी ने एक नियम बताया था कैसे जाना इनके पास, क्योंकि हमारे ज्ञान का, हमारी धारणाओं का लोग जो विरोध करते हैं वो इन सन्यासियों को भी भर देते हैं जाकर के, ये ऐसी हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। इसलिए इनके पास जाने के पहले सवेरे अमृत वेले इनको पहले इमर्ज करके उनको बहुत स्नेह से बाबा के घर का निमंत्रण सूक्ष्म रीति से देना और फिर सामने जाना, एक विधि है ये। तो हम चार भाई एक जगह निकले 8-9 बजे सुबह सुबह, और जब पहले गुफा में हम पहुंचे, उसका नाम ज्ञान गुफा था, वहां एक माता भी थी सन्यासिन और एक भाई भी थे। तो गए तो माता कहती है, आप लोग सवेरे सवेरे आए थे ना? तो नहीं नहीं माता जी, हम पहली बार आए हैं, अभी आए हैं। और वो कह रही है, नहीं नहीं आप सवेरे तो आए थे, निमंत्रण तो दे के गए हमको। मैंने कहा, नहीं हम अभी आए हैं। अब वो जो सूक्ष्म रूप से हम लोग वहां अमृत वेले योग करके आह्वान किया था, उस आत्मा ने उसको कैच किया और उसके आधार से वो बोल रही है कि आप आए थे, हमने यही शक्लें देखी थी। फिर उसने कहा कि मुझे एक अंतर बताओ, पवित्रता और दिव्यता में अंतर क्या है? उस आत्मा ने, उस सन्यासिन ने मुझे पूछा। मेरा ध्यान गया कि बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते इस बात पर। आप सब इस बात को बहुत गहराई से नोट करना, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो पवित्रता का पालन करती हैं, उनके हर कर्म में दिव्यता आती जाती है, बोलने में, सुनने में, देखने में। और उनकी मनसा इतनी पवित्र शुद्ध हो जाती है तो सामने वाले दृश्य को कैच कर सकती है, केवल पवित्रता के आधार से नहीं, लेकिन पवित्र जीवन से जो उसके रहन सहन में दिव्यता आई। दिव्यता माना अलौकिकता, न्यारापन, दैहिक आकर्षण से दूर, जो दिव्य बनते जाते हैं दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सब में, उनको दूर के दृश्यों को कैच करने का अभ्यास हो जाता है। हमारे संकल्पों के भाव और भावनाओं को भी वो कैच कर सकते हैं। बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, यही कहते हैं, बच्चे ऐसी ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी, अगर आप उस समय परख नहीं सकोगे तो धोखा मिलेगा। परखने की शक्ति को बढ़ाओ, और वो परखने की शक्ति तभी बढ़ती है जब जरा भी कोई अदिव्य माना अस्वच्छ संकल्प ना हो, नेगेटिव विचार ना हो, व्यर्थ विचार ना हो, साधारणता ना हो, बोलने में, चलने में, खाने में, यहां तक ड्रेस पहनने में भी। ड्रेस पर भी बहुत ध्यान है। बाबा कई बार कहते थे, बच्चे देखो ब्रह्मा बाबा की जो ड्रेस है ना, कुर्ता पजामा वाली, बाबा इसको चेंज नहीं कर सकता है। साकार बाबा कहते थे, चेंज नहीं कर सकता है। तो बच्चे पूछते थे, बाबा क्यों नहीं कर सकते? कहता, बच्चे इसी ड्रेस से लोगों को साक्षात्कार होते हैं। अगर ये ड्रेस मैंने चेंज कर दी तो उसको पता पहचानेगा ही नहीं वो कौन आया था। दिव्य आत्माएं, दिव्यता को धारण करने वाली आत्माएं हल्की ड्रेस में इधर उधर नहीं रह सकती। ऐसे नहीं जो आया पहन लिया, जैसी आया वैसी ड्रेस पहन लिया, वो भी दिव्यता नहीं है। हमारी चलन में वो दिव्यता नहीं दिखाई देगी, हमारे कर्म में वो दिव्यता नहीं दिखाई देगी, साधारणता जैसे लोग रहते हैं। कभी शरीर की सफाई की नहीं की। दादी पता क्या ध्यान रखती थी, अगर हम लोग एक दो दिन शेविंग ना करें ना, ए सुस्त इधर आओ, सीधा ही सुस्त है, आलसी है, शेविंग नहीं करता है, ये दिव्यता नहीं है। मना ब्राह्मण जीवन में जो स्वच्छता है, बोल की मधुरता है, दृष्टि की पवित्रता है, चेहरे की वो चमक मुस्कान है, चलने में जो रॉयल्टी है, खाने पीने में जो बहुत धैर्यता है, हबच नहीं, लालच नहीं, वो सब दिव्यता के अंदर आता है। ऐसी दिव्यता को धारण करने वाली आत्माएं जो ब्राह्मण बनी है, पवित्रता का व्रत लिया है, उनको बहुत ध्यान देना है। हम साधारण नहीं हैं, जहां आया वहां खा रहे हैं, खाते खाते चलते फिरते खा रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई बात कर रहा है उसको सुन करके उसको टोक रहे हैं, किसी की बात को बिना सुने बिना समझे कट कर रहे हैं। दिव्यता नहीं है। देवता बनने वाली आत्मा एक तरफ रूहानियत और दूसरी तरफ दिव्यता, अलौकिकता। लौकिकता साधारणता को कहते हैं। जैसे लोग हैं, हम अभी लोगों की तरह नहीं है, ध्यान देना। ब्राह्मण आत्माएं लोगों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। जैसे लोग सोते हैं, जैसे लोग हंसते हैं, जैसे लोग घरों में रहते हैं, ब्राह्मण आत्माएं नहीं रह सकती। आप सब बाबा के बच्चे पक्के ब्राह्मण हो, इसलिए आपके घरों में को मंदिर के रूप में रखना है। मंदिर में कभी गंदगी नहीं होती। ऐसे नहीं जो आया जहां आया जैसी आया डाल दिया, खा लिया, बैठ गए, उठ गए। गृहस्थियों जैसा नहीं। आप सब समझना, अभी हम गृहस्थी नहीं है, अभी हमारे घर मंदिर हैं, हम एक मंदिर की मूर्तियां हैं। मूर्तियों में वो दिव्यता है जिसके दर्शन से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहती हैं मूर्तियां जो आप दर्शन करके खुश हो जाते हो? और मूर्तियां भी कैसी बना दी हैं? कोई कोई मूर्ति है जो बहुत रायल, बहुत अच्छी सुंदर बनाते हैं, नहीं तो जितने देवी देवताओं के मंदिरों में आप जाओ, क्या रूप कैसा बना देते हैं। इस रूप का महत्व तो नहीं दिया गया मंदिरों के अंदर। उसके अंदर की आंतरिक दिव्यता उनको आकर्षित कर रही है। उस दिव्यता की झलक से वो आत्मा प्रसन्न हो रही है, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। वो है पूज्य स्थिति का श्रृंगार। पूज्य स्थिति का श्रृंगार ये बाई सुंदरता नहीं है, बाई सजावट नहीं है, आंतरिक सब दिव्य गुणों से संपन्न है। आप देखो कोई भी मूर्ति, मूर्तिकार अगर बना रहा है और मूर्ति में कोई एक अंग टूट गया, कट गया, उस मूर्ति का पूजन नहीं होता, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, उस मूर्ति को म्यूजियम में पहुंचाया जाता है, मंदिर में नहीं रखा जाता। कोई भी मूर्ति खंडित हो, कोई भी मूर्ति की आंख नाक कान टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, अंगुली कटी हुई हो, पैर में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, उस मूर्ति को कभी भी मंदिर में विराजित नहीं करते। उसको कहेंगे ये म्यूजियम के लिए ठीक है, म्यूजियम में भेज दो उसको। हम सब सतयुग की मूर्तियां तैयार हो रही हैं, हम सब पूज्य आत्माएं बन रही हैं। भगवान हमें गढ़ रहा है, गढ़। पूज्य बनाने के लिए हथौड़े लगाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं बनती मूर्ति। इतनी प्यार से शिक्षाएं देता है, सावधानियां देता है, कभी कभी झटका लगा देता है, शिक्षाएं देते देते डांट लगा देता है। साकार मुरलियों में तो शब्द आ जाते हैं। क्या शब्द आते हैं? बहनों को याद होगा, पहले बहुत आते थे, अभी थोड़ा कंट्रोल किया। साकार बाबा सीधा ही कहता था, जैसे भैंस होती है ना, आप अगर गाड़ी के हॉर्न बजा रहे हो, उसके सामने कितने भी हॉर्न बजाओ लेकिन वो हिलेगी नहीं, अपनी जगह पर खड़ी रहे। बाबा कहता है, अरे भगवान कितने हॉर्न बजा रहा है, समय की सूचना दे रहा है, अंत समय आ गया, लेकिन ये मेरे भैंस बुद्धि बच्चे जरा भी हिलते नहीं। ध्यान देना, ये बाबा के दिव्य संकल्प हैं, ऐसे नहीं है उसके अंदर अदिव्यता आ गई। बहुत प्यार से कहता है, बच्चे मुझे भी सटका लगाना पड़ता है कि उनको मूर्ति बनाना है, इनको पूज्य बनाना है, इनके ऊपर हथौड़े चलाने पड़ेंगे। तो हम सब ध्यान दें, अगर कोई ऐसे शब्द बाबा हमें कहता भी है तो हमें पूज्य मूर्ति बनाने के लिए कह रहा है, हमें नहीं कहना है कभी किसी को। हम किसी को कह देंगे तो उसको दिल में तकलीफ पहुंचेगी, वो हमारे लिए हमारा दुश्मन बनेगा। हमारे अंदर इतनी प्यार की शुभ भावनाएं हैं, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो, कभी कोई डिस्टर्ब न हो जाए, इसलिए हम बोल में भी दिव्यता ले आते हैं। किसी की कमी कमजोरी को देख करके उसको हम कट नहीं करते। बाबा ने भी हम सब की अव्यक्त रूप में जो पालना की है, बड़ी वंडरफुल पालना है। अगर आप सब बाबा की अव्यक्त मूल्यों पर ध्यान दें, किसी भी बच्चे की एक छोटी सी कमी को सुधारने के लिए बाबा ने उसकी सैकड़ों विशेषताएं पहले वर्णन की। कितनी महानता बताई है, तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, तुम कितनी पूज्य आत्माएं हो, कितनी भाग्यवान आत्माएं हो। और फिर वो महानता और विशेषता बता करके फिर छोटी सी कमी पर ध्यान खिंचवाता है, बच्चे ये जोर से बोलना अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता। शिक्षा देने का स्वरूप, हम सब बाबा के बच्चों को अपनी दृष्टि, अपनी वृत्तियां बहुत अनासक्त। वृत्ति की दिव्यता है वृत्तियों में कहीं भी आसक्ति न हो, चंचलता न हो, चाहिए चाहिए की चाहनाएं न हो, ऐसी शुद्ध पवित्र वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, दिव्यता संपन्न वृत्ति। स्मृतियों में केवल एक बाबा है, पास्ट की स्मृतियां नहीं है। बाबा ने जो हमें प्राप्ति कराई है उन प्राप्तियों की स्मृति है, हम स्मृति स्वरूप हैं, बाबा से इतना सब प्राप्त है। हमारे बोल की दिव्यता है, बहुत सरल मधुर सम्मानजनक बोल हमारे मुख से निकलने चाहिए। कभी भी बोल साधारण न हो। हरेक ध्यान देना, इस समय ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है, जो भगवान के बच्चे बने हैं, उनके बोल सिद्धि को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए साधारण बोल करके किसी के भाग्य को बिगाड़ नहीं देना। कैसे बोल देते हैं, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ही ऐसा। ये भी ब्राह्मण आत्माएं श्रापित करने वाले बोल नहीं बोल सकती। उस बोल में दिव्यता है कि जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, भगवान कहता हट्टी एक ही है, इसको बदलना ही है, आज नहीं तो कल कहां जाएगा। ऐसी दिव्यता संपन्न वाणी हमें पूज्य बना देती है। हमें उस नजर से लोग देखने लगते हैं कि इनका बोलना कैसा है, इनका चलना कैसा है, कैसे धैर्यता से खाना पीना बैठना उठना। वो रायल संस्कार को ही दिव्यता कहा जाता है। और ऐसी दिव्यता जितनी हम अपने जीवन में लाते जाते हैं, उतना देवताई पद हमारा निश्चित होता जाता है। कई बार एक बात सुनाओ, क्या नहीं करना सभी ब्राह्मणों को, मैं कभी कभी देखता हूं। मान लो आज स्टेज पर टोली मिलने लगे, एक अच्छा कायदा है कि इधर से आओ इधर से जाओ तो लाइन में आते हैं। अगर हम यहां बैठ करके टोली बांटने लगे तो लेने वाले जैसे टोली खत्म हो जाएगी एक दूसरे को धक्का देंगे, मैं पहले मैं पहले मैं पहले। इतनी अदिव्यता दिखाई देती है। देवता बनने वाली आत्मा है, एक टोली के पीछे एक दूसरे को धक्का दे रही है। एक बुजुर्ग आत्मा बेचारी खड़ी नहीं हो सकती, उसको धक्का लग जाएगा, गिर जाएगी, चोट आ जाएगी, उसका ध्यान नहीं है, लेकिन मैं पहले, इसमें मैं पहले। थाली कटोरा खाने पर जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, जैसे भोजन ही कुट जाएगा। वास्तव में दिव्यता पूज्य स्वरूप है। श्रृंगार क्या है हमारा? स्थूल है क्या? बहुत तरह से जाना, बैठना, दो रोटी खाना है, प्रभु की याद में खाना है, ऐसी तृप्त आत्माएं, तृप्त, संपन्न, भरपूर, चाहे किसी की चीज पर आंख न जाए, कितनी भी सुंदर चीज क्यों ना हो। नहीं तो इसके चप्पल बहुत अच्छे हैं, इसके साड़ी बहुत अच्छी है, इसके ये अच्छे, कहां कहां बुद्धि भटक जाती है एक सेकंड में जाकर के। देवता बनने वाली आत्माएं हैं, दिव्यता संपन्न बनने वाली पूज्य आत्माएं हैं, तो रायल संस्कार हमारे दिखाई देने चाहिए। क्या संगम पर चाहिए? भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, कोई चीज की अप्राप्ति नहीं। ऐसी प्राप्ति संपन्न इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहने वाली दिव्यता संपन्न आत्माएं देवता बनती हैं। और बाबा हमें लक्ष्य दे रहा है कि हे ब्राह्मण बच्चों, तुम्हें ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना है। कहां तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं? भट्टी करना माना क्या? परिवर्तन ना। जहां भी अदिव्यता हो, साधारणता हो, हल्कापन हो, लौकिकता दिखाई देती हो, लोग ये न कहें जैसे ये करते हैं ऐसे ये करते हैं, इनमें क्या अंतर है, वो भी घर में झगड़ते हैं, ये भी घर में झगड़ते हैं, वो भी छोटी छोटी बात में नाराज होते हैं, रूठते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये भी करते हैं, तो ब्राह्मणों में और लोगों में अंतर क्या हुआ? हम सब बाबा के बच्चे बहुत रायल हैं। हमारे चलन से और चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष होगा, हमारे ज्ञान सुनाने से नहीं होगा। कितना भी सुना लो लोगों, प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारी जीवन के अंदर वो रायल्टी दिखाई देगी, वो दिव्यता आएगी, अलौकिकता आएगी। नयनों में रूहानियत है, बोल में मधुरता है, व्यवहार में सरलता है, और अंदर की संतुष्टता है, भरपूरता है, तृप्ति है। किसी की चीज में आंख नहीं जाती, कितनी भी अच्छी हो, मुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे आपने सब कुछ दे दिया। जो ऐसी भरपूर आत्माएं हैं, संपन्न आत्माएं हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं, तृप्त हैं, वही दिव्यता का अनुभव करा सकती हैं और वही लोगों के लिए संगम पर पूज्य हैं। तो हम सब बाबा के बच्चों को पुजारीपन से तो बाबा ने मुक्त कर दिया, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। रॉयल्टी अलग है, सम्मान देना अलग चीज है, लेकिन ऐसे नहीं जहां आए, जैसे मंदिरों में जाते हैं ना, मैं एक मंदिर में गया तो वहां पर हर देवता की मूर्ति भी थी, हर देवता की, सभी जितने हमारे भारत के देवी देवता हैं उन्होंने सबका अलग अलग मंदिर बना के रखा था। तीन चार मंजिल का मंदिर था, सब जगह जाएं, पूजा करें, लोग सिर झुकाएं, सिर टिकाएं, कुछ भंडारी में पैसा डालें, चढ़ावा चढ़ाएं, फिर आगे बढ़ जाएं, फिर आगे बढ़ जाएं। मैं भी उनके पीछे पीछे था, देख रहा था। लास्ट में देखा एक जगह पर भोग लग रहा था, तो हमने कहा इतने देवी देवता हैं तो भूखे बैठे, इनको भोगने लगा, भोग किसको लग रहा है? तो भोग उसको लग रहा था जिसने वो मंदिर बनवाया था। भक्ति की भी क्या हालत हो गई वो आप सब समझ सकते हो। भावनाएं अलग थी, कमाई के साधन बना दिए, रोजी रोटी के साधन बना दिए लोगों ने। हम पूज्य आत्माएं हैं, हम कोई भी पैसा कमाने के लिए धंधा नहीं कर रहे हैं। हम क्लास इसलिए नहीं कराएंगे मुझे भंडारी मिलेगी, पैसा मिलेगा, हम इसलिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं। कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी चाहना नहीं है, किसी से हम कुछ हाथ फैलाना नहीं, लेना नहीं चाहते। बाबा ने अपने बच्चों को देना सिखाया है, दाता बनाया, देते चलो देते चलो, किसी से कुछ नहीं चाहिए। नाम चाहिए, न मान चाहिए, न प्रशंसा चाहिए, न धन चाहिए, न साधन चाहिए। जिस दिन आप इस बात में दाता बन जाओगे उतना दिव्यता आ जाएगी। दाता स्वरूप ही दिव्यता का स्वरूप है और वही देवता कहलाता है, वही पूज्य स्वरूप है। तो संगम युग पर हम सब बाबा के बच्चों को मास्टर दाता बनना है, भरपूर रहना है, तृप्त रहना है, सबको देना है, देना है। दृष्टि से स्नेह दो, बोल से मधुर दो, शब्द बोल दो, कर्म आपके देखें तो उनको लगे कि हाँ ऐसे करना चाहिए। कितना करते हुए अकड़ता है, कोई भान नहीं है, हल्के हैं, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कितना न्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। ऐसी दिव्यता संपन्न ब्राह्मण आत्माओं की जीवन बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा संगम पर पूज्य बनाना चाहते हैं, ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं। ये रत्नों से श्रृंगार हो रहा है, ज्ञान रत्नों से, गुणों से श्रृंगार हो रहा है। और जब ये आत्मा श्रृंगार जाएगी, समय श्रृंगारित हो जाएगी, तब भक्ति के अंदर उसके हर कर्म का श्रृंगार होगा, हर कर्म की पूजा होगी, हर कर्म के दर्शन होंगे। तो सभी ऐसे दर्शनीय मूर्त पूज्य आत्माएं बनो संगम पर ही, और संगम की प्रारब्ध फिर पूरे कल्प में हम सबको प्राप्त होगी। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत छोटी छोटी धारणाएं एकदम सरल रीति से हम सबको सुनाई, जो हमारे लिए इजी हो जाए हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए। और निश्चित रूप से अगर हम इन धारणाओं पर ध्यान देंगे तो पूज्य स्थिति जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो भाई जी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पास जो अनमोल खजाने हैं ज्ञान के, उसमें से कुछ हीरे मोती हम सबके समक्ष रखें। भाई जी की ये विशेषता है कि बाबा की ही बातें, भाई जी कई बार कहते हैं मैं क्लास कराना नहीं जानता, बस मैं बाबा की बातें सुनाता हूँ, जो आप सभी ने सुनी। तो ऐसी बातें हम हमेशा सुनते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।